ओम शांति। बोलो प्यार से ओम शांति। आप सभी बाबा के वो भाग्यवान बच्चे हो जो बाबा के डायरेक्ट बोल समझ सकते हो। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि ट्रांसलेशन में कितनी भी अच्छी ट्रांसलेशन की जाए फिर भी उसका भाव बदल जाता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है। इसलिए बाबा की डायरेक्ट भाषा को समझना, उनके भावों को समझना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है ना। नशा रहता है ना हिंदी जानने वालों को, क्योंकि बाबा भले सिंधी परिवार से थे लेकिन शुरू से बाबा ने मुरली हिंदी में ही चलाई। कोई कोई शब्द सिंधी का यूज किया है बाबा ने, लेकिन कभी भी बात भी कोई सिंधी में करता था तो कहते थे इसका पापड़ पानी बंद कर दो। पापड़ पानी बंद करने के लिए क्यों कहता था? क्योंकि सिंधियों में जब किसी की मेहमान नवाजी की जाती है ना तो पहले पापड़ और पानी ऑफर किया जाता है। कोई मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए तो उसको पापड़ पानी खिलाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता था ये सिंधी बोल रहे हैं ना, इनका पापड़ पानी बंद कर दो। बाबा हमेशा सिंधी से, जो भी बाबा लिखते थे वो भले सिंधी थी लेकिन लैंग्वेज सिंधी यूज नहीं किया बाबा ने, लैंग्वेज सिंधी हिंदी ही थी, सिर्फ लिपि थी सिंधी, लिखते उर्दू जैसा ही थे। तो बाबा की जो भी पत्र व्यवहार हुए, बाबा की जो हाथ की लिखी हुई मुरलियां हैं, दादियों की जो मुरलियां हैं हाथ की लिखी हुई, वो सब हैं हिंदी में ही, सिर्फ उसकी लिखत सिर्फ उल्टी राइटिंग सिंधी है। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला, मैंने सिंधी भाषा नहीं सीखी लेकिन सिंधी पढ़ना और लिखना सीखा, जो है हिंदी लेकिन लिखी गई है ऐसे। क्योंकि सबसे पहली नियम शर्त यही हमारे आगे था कि अगर टाइप सीखनी है तो टाइप के लिए पहले ये पढ़ना सीखना चाहिए। अगर दादी कोई पत्र देगी या दीदी क्वेश्चन आंसर निकालेंगी तो वो राइटिंग तो सिंधी होगी, तुम कैसे टाइप करोगे? इसलिए पहले वो सीखो। मैं आया तो एक छोटे से गांव से था यूपी से, जहां फुल हिंदी वाले, कोई भी दूसरी भाषा नहीं। इसलिए जब सिंधी की बात आई तो थोड़ा सा ऐसे लगा मैं कैसे सीख सकता हूं, लेकिन बाबा ने ऐसा सहज सिखा दिया, 10-12 दिन में मैं लिखना और पढ़ना सीख गया। और फिर लिखना पढ़ना जब सीख गया तो टाइप सीखी। फिर दीदी की डायरी को अगर पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि दीदी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की नहीं थी, उनकी अपनी शॉर्ट हैंड, उनकी अपने ही प्रकार की लिखत होती थी। तो दीदी की राइटिंग पढ़ने में बहुत मेहनत थी, बड़े बड़े भी नहीं पढ़ सकते। तो दीदी कहती तुमने मेरी राइटिंग अगर पढ़ लिया तो सबकी पढ़ लेगा, क्योंकि बाबा की भाषा में इतनी मुरलियों को शॉर्ट हैंड दीदी की कैसी होगी बताओ। परमात्मा लिखना तो पी लिख दिया, ड्रामा लिखना तो डी लिख दिया, बाबा लिखना तो बी लिख दिया, ऐसे दीदी की शॉर्ट हैंड थी। तो मैंने दीदी के साथ रह करके पहले ये सीखा पढ़ना, उनकी राइटिंग पढ़ना सीखा। और फिर बाबा के पास जितने पत्र आते थे उन पत्रों का जवाब बाबा अपने हाथ से पहले देते थे, चाहे 25-30-40 बच्चे तो थोड़े थे उस समय, लेकिन बाबा की राइटिंग इतनी बड़ी बड़ी थी जो एक पेज में दो लाइन हो जाए, दो लाइन में पेज भर जाएगा। इसलिए बाबा तो सब बच्चों को अपने हाथ से पत्र लिखते थे, जितने पत्र आते थे सब लिखते थे। फिर उसके बाद उसके ऊपर भी दीदियां दादियां हिंदी में या सिंधी में लिख करके देती थी, क्योंकि बाबा की राइटिंग सब नहीं पढ़ सकते थे। बहुत बड़े बड़े अक्षर, लाल पेंसिल थी बाबा की, और बहुत फास्ट बाबा लिखता था। तो बाबा की राइटिंग के ऊपर भी दूसरे को लिखना पड़ता था कि ये क्या लिखा है बाबा ने। तो मुझे बाबा की राइटिंग भी पढ़ने का सौभाग्य मिला, दीदी दादी की राइटिंग भी पढ़ने का सौभाग्य मिला, और अभी तक भी गुलजार दादी जब बाबा का मैसेज लाती हैं, संदेश, तो भी सिंधी में ही लिखती हैं, उसको भी पढ़ना पड़ता है। और ऐसा लिख देती हैं, कहती राजू भाई के पास भेज दो, अपने आप ठीक कर लेगा, फेर नहीं करते, ऐसे ही दे देते लिख करके। तो ड्रामा अनुसार बाबा की मुरलियों से दादियों के अंग संग रहने का सौभाग्य मिल गया। इसलिए जब भी क्लास की कोई टॉपिक मुझे देते हैं तो कहते हैं आप मुरली पर ही आप पहले बताओ। तो आज मुझे टॉपिक दिया श्रीमत की गहराई, मालूम है ना, यही टॉपिक है ना, क्योंकि मुरली माना श्रीमत। श्रीमत कहाँ से मिलती है? दीदी दादी से, भाई बहनों से। कई बार हम कह देते हैं हमारी बहन ने श्रीमत दी है, ऐसे तो नहीं है श्रीमती की श्रीमत। कई भाइयों को होता है कि मेरी श्रीमती ने मेरे को मत दी है, वो मत नहीं, श्रीमत माना श्रेष्ठ, मत मत माना राय। श्रेष्ठ जो मत है जिसमें आत्मा का कल्याण छिपा हुआ है, कल्याण करने वाला बाप, कल्याणकारी शिव बाबा, वो जो मत देता है उसमें मेरा कल्याण है, इसलिए उसको श्रेष्ठ मत कहा जाता है। श्री माना श्रेष्ठ। तो बाबा की जो श्रेष्ठ मत है, जो राय है, जिससे मुझ आत्मा का कल्याण हो, उसको ही श्रीमत कहा जाता है। अब इस आत्मा का कल्याण किस बात में है, इस आत्मा का कल्याण किस बात में है? बाबा त्रिकालदर्शी है, वो जानता है कि इस बच्चे को ये मत दूंगा तो इसका कल्याण इसमें है, इसको मत दे देगा तुम सफेद साड़ी में रहना, और इसको मत दे देगा तुम सिर्फ सफेद साड़ी नहीं पहनना, तुम रंगीन ड्रेस में ही रहना। एक को मत देगा कि तुम सिनेमा बिल्कुल नहीं देखना, और दूसरे को कहेगा भले सिनेमा बदले, देखने में कोई हर्जा नहीं, बच्चे देख लेना। एक को कहेगा तुम किसी के हाथ की चाय भी नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना, और दूसरा आएगा सामने तो उसको कहेगा भले बच्चे पी सकते हो, पी सकते हो। बाबा की श्रेष्ठ मत, कल्याणकारी बाबा ने ये श्री मत हम सब को दी। अभी कई बाबा के बच्चे इस मत में मुन जाते हैं, क्योंकि मुरली के अंदर दोनों प्रकार की बातें आती। कभी बच्चों के बाबा के सामने ऐसे बच्चे आ गए जिनके आगे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अपने आप को सेट नहीं कर पाते हैं, कैसे हम इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, मिलिट्री में है, बाहर खाना पड़ता है, मेस में खाना पड़ता है, या हम किसी के अंडर हैं, कोई दबाव के अंदर हैं, मुझे वहां पर भी ऑफिसर्स का कहना मानना पड़ता है। तो बाबा क्या कहेगा, नहीं मानो, मानना पड़ता है ना ऐसे समय पर, अगर नहीं मानोगे तो तुमको डिसमिस कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। तो उसकी श्रेष्ठ मत उसके कल्याण के लिए उसको बाबा बताएगा, उसमें उसका कल्याण है कि पीने मखाने में उसके लिए हर्जा नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं पिएगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अगर वो बॉर्डर पर देश की रक्षा नहीं करेगा तो उसकी नौकरी नहीं रहेगी, तो उसमें अगर बाबा की मत पर वो चलेगा ऐसी मत, तो फिर क्या होगा, उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी नौकरी छूट जाएगी। इसलिए बाबा तो हर बच्चे के कल्याण को देखता है कि इसका इस बात में कल्याण है। आज कोई प्रवृत्ति वाली माताएं हैं, घर गृहस्थ में रहती हैं, अगर वो सफेद साड़ी पहन करके रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे, ये शायद विधवा हो गई है, सफेद साड़ी तो बहुत अपशगुन माना जाता है, ये घर में क्यों पहन रही है ऐसी। अगर वो टीका नहीं लगाएगी, मांग नहीं भरेगी, कहेंगे इसका सुहाग खत्म हो गया। तो उसके लिए तो बाबा कहेगा ना, बच्चे तुम भले टीका लगाओ, सफेद रंगीन ड्रेस पहनो, मांग भरो, अच्छा श्रृंगार करके अच्छे रहो। लेकिन जो समर्पित हैं, जो सरेंडर हैं, जिनको कोई आगे पीछे बंधन नहीं है, कुमार कुमारियां हैं, वो क्यों ऐसा श्रृंगार करें, क्यों इस प्रकार का फैशन करें, उनके लिए स्ट्रिक्ट है। तो बाबा की श्रीमत को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, मूंझना नहीं है। लेकिन मेरा किस बात में कल्याण है, कल्याणकारी बाबा मेरे लिए क्या मत दे रहा है, उसको समझ करके उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस मत में मेरा कल्याण है। कुछ मतें ऐसी हैं जिसके लिए बाबा ने कंपलसरी कर दिया है, उसमें लूज नहीं किया किसी को भी, चाहे वो समर्पित है, चाहे प्रवृत्ति में रहता है, चाहे बांधेला है, बांधेली है, लेकिन वो मत सब के लिए एक है, उसमें कोई भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं। पवित्र बनो, योगी बनो। कलयुग के अंतिम समय में पवित्र और योगी बनने की सबसे श्रेष्ठ मत बाबा ने हम सबको दी है, और पवित्रता को कायम रखने के लिए, उसमें नंबर वन प्राप्ति के करने के लिए धारणाएं हैं, भिन्न भिन्न रीति की धारणाएं हैं। जैसे बाबा कहता है, बच्चे किसी पतित के हाथ का नहीं खाओ, किसी विकारी के हाथ का नहीं खाओ, ऐसी कोई चीजें नहीं खाओ जो तुम्हारे इंद्रियों में उत्तेजना पैदा कर दें। हर बात की श्रीमत बाबा ने हम बच्चों को दी है, और वो हमारी इस ऊंची स्टेज को कायम रखने के लिए दी है। जो पवित्रता की ऊंची स्टेज तक हम सबको बाबा ले जाना चाहता है, संपूर्ण पावन बनाना चाहता है, अपने समान बना करके अपने साथ ले जाना चाहता है, उसके लिए कुछ कायदे कड़ाई से पालन करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने हम सबको वहां पर ढील नहीं दी है, कम से कम कहीं भी रहो लेकिन सात्विक तो खाओ, उत्तेजित करने वाले पदार्थ नहीं खाओ। ये तो सब कर सकते हैं, भाई हम मिर्ची नहीं खाते, यार डॉक्टर कह दे आपको ये चीज नहीं खानी है, आपको शुगर है, आपको चीनी नहीं खानी है, तो क्या चीनी आपको कोई जबरदस्ती खिला देगा क्या, नहीं खिलाएगा ना? आप कहेंगे भाई हमको डॉक्टर की मना है। तो जो चीजें हमारी कर्म इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाली हैं, हमारी मनोवृत्तियों को चंचल और दूषित करने वाली हैं, उसके लिए हम सबको कड़ाई से एक समझ करके नियम पालन करना, बाबा की ये मत मुझे मिली है। बाकी इसके हाथ का नहीं खाऊं, उसके हाथ का नहीं खाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, तो जैसी जिसकी परिस्थिति उसके लिए वैसा नियम। उसके आगे परिस्थिति है ही नहीं। मान लो आज का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो बिजनेस अपने स्वेच्छा से जो चाहे वो करे, जब चाहे दुकान बंद करे, जब चाहे खोले, जब चाहे कुछ काम करे या न करे, तो उसके लिए श्रीमत क्या है बाबा की? उसके लिए ये स्ट्रिक्ट श्रीमत है कि तुम्हें किसी के हाथ का खाने की जरूरत नहीं है, तुमको ये नियम कड़ाई से पालन करना है, क्योंकि तुम तो राजा हो, तुम किसी के अंडर नहीं काम कर रहे हो, लेकिन जो अंडर काम कर रहा है, जिसके ऊपर कोई बॉस है, जिसको किसी पार्टी के अंदर जाना ही पड़ता है, वहां पर बाबा उसको ढील देता है, बच्चे कभी खाना पड़ता है तो योग में रह करके खा लो, बाबा को याद करो, बाबा को भोग लगाओ, बाबा को स्वीकार कराओ, फिर खा लो, तुम अशुद्ध थोड़ी हो जाओगे, लेकिन सात्विक खाना, शाकाहारी खाना और परहेज से छोड़ना। ऐसे नहीं हबच करके खा लिया, खुश करने के लिए ले लिया। लेकिन ऐसी कई बातें, ऐसी कई श्रीमत में बाबा के बच्चे चलते चलते ये कर रहा है तो मैं भी किया, इसने किया तो मैं भी किया, उसके लिए क्या श्रीमत है, तुम्हारे लिए क्या श्रीमत है, दोनों में अंतर है। इस गहराई को समझना, समझ रहे हैं ना मेरी बात, इस गहराई को समझना कि मेरे कल्याण के लिए कल्याणकारी बाबा मुझे क्या मत दे रहा है। दृष्टि, बोल, हमारी वृत्तियां, हमारी स्मृति, हमारे कर्म जो सूक्ष्म हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे लिए पर्सनल हैं, उनके लिए सबके प्रति एक सी श्रीमत है बाबा, उसमें कोई अंतर नहीं है। व्यवहार में कुछ अंतर है, प्रैक्टिकल व्यवहार में कुछ अंतर है, लेकिन सूक्ष्म में हमारी वृत्ति कैसी हो, हमारी स्मृति कैसी हो, हमारे बोल कैसे हो, हमारे कर्म कैसे हो, उसके लिए सबको एक जैसी मत दी है बाबा ने। जैसे आज बोल के लिए श्रीमत मिली मुरली के अंदर, बच्चे बहुत अति मीठा बोलो, कड़वा बोल नहीं निकलना चाहिए। ये ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण है, आज की मुरली में था ना हेडलाइन यही थी। ऐसे ही अगर कोई भी प्रकार की बात आती है आपके सामने तो ये स्मृति में रखो कि बाबा की श्रीमत मुझे क्या कहती है। मुझे अपने मुख से कोई भी कट्टु वचन नहीं बोलना है, कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है, कोई को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने हैं, बहुत युक्तियुक्त कम बोल से काम लेना है। अब इस श्रीमत को हमें समझना पड़ेगा। कहेंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम जोर से नहीं बोलेंगे तो वो सच नहीं बोलेगा, वैसा करेगा, कहना नहीं मानेगा, काम रुक जाएगा। कई प्रकार से हम लोग अपनी अपनी बातें बाबा के सामने रखते हैं। तो कभी कभी बाबा कह देता, मान लो आज पुलिस की ड्यूटी आपकी है, पहली श्रीमत है तुम प्यार से समझा करके चोर से भी सच्चा बुलवा लो। लेकिन अगर मान लो चोर प्यार से नहीं समझता है तो उसको आंख दिखा सकते हो, उसको डंडा भी लगा सकते हो, ये भी श्रीमत दे देता है। लेकिन श्रीमत सबके लिए नहीं है, उसकी ड्यूटी के अनुसार उसको श्रीमत है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाला जाएगा। इसलिए बाबा ने उसके लिए वो मत दी है, उसके कल्याण के लिए वो मत है। अब हम सबको जरूरत नहीं है गलत बोल करके काम कराने की, गुस्से में आकर के काम कराने की। इसलिए बाबा कहता सबसे मीठा, सबसे प्यार से, बहुत सरलता से मिलनसार बन करके सबको चलाओ, सबके संस्कारों को समझ लो, इसका संस्कार ऐसा है, इसका संस्कार ऐसा है। संगठन में चलने की भी कला चाहिए, कईयों को संगठन में चलने की कला नहीं आती, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात में अपसेट, मूड खराब। और जबकि बाबा की श्रीमत मिली हुई है, कुछ भी कुछ हो जाए तुम्हारी मूड सदा एक रस, खुशनुमा, प्रसन्न चित्त रहनी चाहिए, मूड घड़ी घड़ी चेंज नहीं होनी चाहिए। श्रीमत की गहराई को आप समझना, मैं बताता जा रहा हूं थोड़ा थोड़ा है। मूड एक रस रहे ये श्रीमत है, लेकिन कई बार एक रस मूड कई रसों में चली जाती, बदलती जाती है। जो सीन देखेंगे, जो घटनाएं घटेंगी, उसी अनुसार उनकी मूड परिवर्तित होती जाएगी। और संगठन में परख की शक्ति चाहिए कि इसकी मूड इस समय कैसी है। अगर उसकी मूड को हमने परखा नहीं और हमने उसके आगे अपनी कोई बात रख दी तो बात कट जाएगी, वहां टकराव शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा हमेशा सिखाते हैं कि संगठन में चलने की भी कला होनी चाहिए। तो श्रीमत बाबा ने हमारी दृष्टि के लिए क्या दी, हमारी वृत्ति के लिए क्या दी, खान पान के लिए क्या दी, बोलचाल के लिए क्या दी, व्यवहार के लिए क्या दी। आप हर एक श्रीमत को नोट करो, कुमार के लिए श्रीमत क्या है, प्रवृत्ति वाले के लिए श्रीमत क्या है, बच्चों के लिए श्रीमत क्या है, स्टूडेंट्स लाइफ में श्रीमत क्या है, बुजुर्गों के लिए श्रीमत क्या है। अगर इसको थोड़ा सा, मैंने एक बार इस मुरलियों से इस प्रकार की बहुत सी पॉइंट्स निकाली थी, हर वर्ग के लिए, इस वर्ग के लिए ये है, इस वर्ग के लिए ये है, इस वर्ग के लिए ये है। मुरली एक ही है, लेकिन उसको सुनने का तरीका, उसको समझने का तरीका हर एक का अपना अपना है। उसको बहुत ध्यान से पढ़ करके समझ करके ये श्रीमत आज बाबा ने मेरे लिए दी है, और इसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े मुझे इसका पालन करना है दृढ़ता के साथ। संकल्प पक्का करेंगे ना, बाबा की मदद मिल जाएगी। बाबा कहे और बच्चे करें तो बाबा के गुप्त दुआएं मिल जाती। उसी समय बाबा की गुप्त दुआएं, कल के वरदान में था ना कि बाबा ऐसे ऊपर से आशीर्वाद नहीं देता है, मुख से आशीर्वाद नहीं देता है, लेकिन बाबा का स्नेह ही आशीर्वाद के रूप में बच्चों की पालना करता है। बहुत बड़ी बात है ये, इसको अंडरलाइन करके आप देखेंगे कि हम सबकी जो पालना हो रही है ये बाबा की गुप्त आशीर्वाद से हो रही है। बहुत स्नेह की पालना है, इतनी स्नेह से बाबा हम सबको एक एक बात पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है। अगर मान लो श्रीमत पूछने के लिए कोई डायरेक्ट बाबा के पास आ जाए, बाबा इतनी सारी श्रीमत मुरली में दे रहा है फिर भी पूछता रहे, तो बाबा क्या समझेगा? माना मुरली के अंदर सब प्रकार की श्रीमत है और फिर भी बाबा के सामने आकर के कोई पूछता है बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा बुद्धू? बुद्धू नहीं कहेगा, क्या कहेगा? कर लो कुछ भले का। जानता है बाबा कि ये बच्चा अभी इस मत को पालन करने की हैसियत नहीं है, इसकी ताकत नहीं है। अगर मैं इसको मना करूंगा फिर भी ये गलत करेगा जाके, इसलिए बाबा मना नहीं कर सकता है क्योंकि कल्याणकारी है। पूछने आया है, माना इसके अंदर वो कमी है, शक्ति नहीं है, इसलिए पूछने आया है। अगर शक्ति है तो सामना करे ना। मान लो आज कोई कुमार है या कुमारी है, हम सब जानते हैं बाबा ने हम सबको कहा है अंतिम जन्म है, कोई भी नया बंधन नहीं बनाना है, श्रीमत है ना सबके लिए एक जैसी है। ज्ञान मिला इसलिए है, ज्ञान की सब्जेक्ट बाबा इसलिए पढ़ा रहा है कि कोई भी नया कर्म बंधन न बने और जितने बने हुए कर्म बंधन है वो सब कट जाए, ज्ञान इसीलिए दिया। टोटल ज्ञान का ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे ना, एक है ज्ञान की सब्जेक्ट, उस विषय की ऑब्जेक्ट क्या है, उसका एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है। आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, परमधाम का ज्ञान दिया, पुनर्जन्म का ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया, जितना ज्ञान हम सुनते हैं 7 दिन में कोर्स कराया जाता है, मुरली के अंदर जितनी ज्ञान की पॉइंट्स आती हैं, उन सब के पीछे लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? क्यों इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है? और सब जानते हैं कि ये ज्ञान केवल संगम पर चलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। सत्युग त्रेता में प्रारब्ध है और द्वापर कलयुग में ये ज्ञान नहीं है, वो इसी ज्ञान का बदला हुआ रूप शास्त्रों के आधार से मनुष्य आत्माओं ने जितना कैच कर पाया वो लिखा है, इसलिए उसमें सत्यता नहीं रही है। संगम युग पर जो बाबा ने ज्ञान दिया उससे हमारी केवल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनी। तो इस ज्ञान के पीछे इतनी मेहनत जो बाबा हमको पढ़ा रहा है, इतने वर्षों से जो बाबा की मुरलियां चल रही हैं, हम सब रोज स्टडी कर रहे हैं, हम कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, उस ज्ञान को हम जो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, उसकी हम ऑब्जेक्ट क्या है? मुक्ति, माना बंधनों से मुक्ति। मुक्ति कैसे है? और कोई कार्य से मुक्ति नहीं है, संबंधों से भी मुक्ति नहीं है, लेकिन बंधनों से मुक्ति। कोई भी आत्मा नए बंधन में न बंध जाए, पुराने को ज्ञान से चुकतू करे, नया बंधन न बांधे, इसलिए ज्ञान दिया है। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने वाली आत्माएं अगर बाबा के आगे आकर के पूछें, बाबा मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप बहुत तंग कर रहे हैं, कहते हैं शादी करनी पड़ेगी, मैं क्या करूं, क्या कहेगा बाबा? बच्चे भले करो, कहेगा ना, यही कहेगा कि नहीं करो, क्या कहेगा? उसने श्रीमत दे दी है कि करने में बहुत बंधन है, श्रीमत मिली हुई सबके लिए, लेकिन उसका पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वो आकर के पूछ रहा है, या उसकी अपनी मानसिक स्थिति इतनी डेवलप नहीं है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं सामना करके पार करूंगा, भगवान की श्रीमत डायरेक्ट मुझे मिली है मुरली में कि बच्चे तुम्हें कोई बंधन में नहीं बंधना है, इसलिए वो कभी पूछेगा ही नहीं किसी से, पूछने की क्या जरूरत है बाबा से आकर के, पूछा है माना उसकी कमजोरी है, और बाबा अगर उसको आज कह दे बच्चे नहीं करना और कल जाकर के कर ले, तो एक तो मुरली का उल्लंघन हुआ और एक डायरेक्ट बोल का भी उल्लंघन हो गया, डबल पाप चढ़ जाएगा। इसलिए कल्याणकारी बाबा बच्चों पर डबल पाप नहीं चढ़ा सकता है, उसको यही छुट्टी देगा, भले बच्चे करो, एक ही पाप चढ़ेगा। अब इस बात को कई बार समझ नहीं पाते, इसने पूछा इसको बाबा ने छुट्टी दे दी, इसने पूछा छुट्टी दी मेरे को क्यों नहीं छुट्टी दी, मेरे को अगर बाबा कहेगा भी तो डायरेक्ट मुरली के अंदर कह देगा बच्चे, वो जानता है इस बच्चे को कोई बंधन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, क्यों बंधेगा, इसलिए उसके लिए श्रीमत है। भूल से भी कभी भी संकल्प भी नहीं करना कि मुझे किसी बंधन में बंधना है, इसलिए इस बात को गहराई से समझना है। मान लो आज कोई कहता है बाबा मुझे खाना ही पड़ता है, मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं बीमार रहती हूं रहता हूं, मेरी बहू बना के देती, मैं क्या करूं, और कोई बनाने वाला ही भोजन घर में नहीं है, तो क्या उसको बाबा कहेगा नहीं बच्चे तुम भूखे रहना लेकिन खाना नहीं, क्या कहेगा उसको? परिस्थिति उसके आगे ऐसी आ गई है। अगर वो योगी बाबा का बहुत पक्का बच्चा है तो बाबा से पूछेगा नहीं, लेकिन योग से ही आह्वान करेगा और कोई आत्मा उसके लिए भोजन बनाने वाली निमित्त बन जाएगी, लेकिन वो समझता है मुझे अभी इसके हाथ का खाना पड़ेगा फिर मैं बाबा से श्रीमत ले लूं, तो बाबा कहे खा लो। अगर कोई पक्का बच्चा है और बहुत निश्चय बुद्धि है तो उसको कहीं ना कहीं से रास्ता भी मिल जाता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, कोई ना कोई बना के उसको खिला देता है, कोई ऐसी बच्चियां निकल आती हैं, कोई ऐसी बहुएं माताएं निकल आती हैं ज्ञानी तो आत्माएं जो उसको समय पर साथ देती हैं, लेकिन उसके निश्चय का वहां पर परीक्षा है, उसके दृढ़ता की परीक्षा है, अगर वो दृढ़ है निश्चयी है भूख नहीं मरेगा, लेकिन अगर उसके मन में कमजोरी है कि अभी तो मुझे इसके हाथ का खाना ही पड़ेगा, अभी कोई रास्ता ही नहीं है, तो बाबा जरूर कहेगा बच्चे जब कोई बात नहीं, थाली आती है सामने, बाबा को भोग लगा करके बहुत प्यार से उसको समझा दो, स्नान पानी करके आपको बना के खिला दे। अब इस बात में कई लोग इसमें मुंझ जाते हैं, क्या करूं कैसे करूं, बाबा कहते मुंझ क्यों रहे हो, पूछोगे तो छुट्टी मिल जाएगी, और अगर पक्के हो तो बस कुछ भी हो जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने आप सफलता मिल जाएगी, रास्ता निकल आएगा, कोई भूखे नहीं मरते संसार में, लेकिन तुम्हारे मन की कमजोरी तुम्हारे आगे विघ्न है, इसलिए इस श्रीमत को समझना, गहराई से समझना कि ये श्रीमत बाबा की क्या कह रही है, कि बच्चे अपने संकल्पों को दृढ़ बनाओ, सकारात्मक बनाओ, शुभ चिंतन में रहने की अभ्यासी बनो, आवाहन करो बाबा का आवाहन करो, समय पर आपको राइट टचिंग आनी चाहिए। राइट टचिंग मान लो आ भी रही है, बाबा टच करा ये करो ये नहीं करो ऐसे करो ऐसे नहीं करो, लेकिन आपके पास कैचिंग पावर नहीं है, तो टच कर रहा है और आप कैच नहीं कर रहे हैं, कैच क्यों नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते कैच बोलो, कैच क्यों नहीं कर पाते बाबा की टचिंग को, बाबा तो टच करता है बच्चों को, क्योंकि अपनी बुद्धि को कहीं न कहीं इंगेज रखा है, टचिंग इसलिए कैच नहीं होती। मान लो आप हमको फोन पर कोई हेलो हेलो कर रहा है लेकिन मेरा फोन इंगेज है, कहीं ना कहीं हमने उसको बिजी करके रखा है। तो हेलो करने वाले की आवाज आएगी कैसे है? तो बाबा भी कहता है, कई बार मैं बच्चों को कहता हूं, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो, टच करता हूं, लेकिन बच्चों ने इतना अपनी बुद्धि को बिजी करके रखा है, इतना इधर उधर की बातों में रहते हैं, इतने संकल्पों में रहते हैं, जो बाबा की प्रेरणाओं को कैच नहीं कर पाते। इसलिए श्रीमत है कि इस बुद्धि को बहुत लाइट रखो, थकी हुई बुद्धि कभी भी ठीक कैच नहीं कर सकती, बुद्धि को थकाओ नहीं, बहुत सोचने से बुद्धि थक जाती है, बहुत प्रकार के विचार इसमें आते जाते हैं, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, थकी हुई बुद्धि है, ठीक निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए जब बाबा ने एक बार मुझे वरदान दिया था, पहली बार जब बाबा से हम पर्सनल मिले थे, तो बाबा ने कहा तुम्हें बुद्धि का वरदान है, बहुत खुशी हुई थी उसकी। जब ये कहा कि बुद्धि को वरदान है, तो मैंने संकल्प आया, ये वरदान बाबा कब, ये तो सरस्वती का वरदान है बुद्धि का, बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय करे। तो बाबा ने उसी समय उसका जवाब दिया, इसको तुमने स्वउन्नति के साधनों में व्यस्त रखा है, कोई भी प्रकार से इधर उधर के इस बुद्धि में संकल्प आने नहीं दिए हैं, इसलिए बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय करने के कारण वरदानी बनती गई है, और जो चाहे वो कर सकते हैं। हम सबको ब्राह्मण जीवन में बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है, मेरी बुद्धि कभी भी मैली न हो, मेरी बुद्धि कभी डिस्टर्ब न हो, मेरी बुद्धि कभी उलझ न जाए किसी बात में, उलझ जाती है, कोई बात सुनेंगे देखेंगे ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने किया, ये कब हुआ, उलझ गई, उसी में चक्कर में आ गई। इसलिए हर बात को देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, फुल स्टॉप तभी लग सकता है जब ये पाठ हमको बहुत गहराई से पक्का हो तब, नहीं तो कितना समय तक बुद्धि चलती रहती है, रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, बहुत सारी बातें, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर ये कल्याणकारी ड्रामा की बिंदी है, तो जो हुआ बाबा कहता अच्छे से अच्छा हुआ, अच्छे से अच्छा होगा, कोई सीन इसमें ड्रामा के अंदर गलत नहीं है। अगर गलत करार आप बोल रहे हो तो माना क्रिएटर और डायरेक्टर को आप गाइड कर रहे हो, उसको भी डायरेक्शन दे रहे हो, जिसने ड्रामा बनाया, जिसका रचयिता वो है, जो क्रिएटर मुख्य एक्टर वो है, प्रिंसिपल एक्टर डायरेक्टर वो है, उसके ड्रामा में नुक्स क्यों निकाल रहे हो। इसलिए बाबा कहता है मान लो कुछ लगता है ये बुरा हुआ और आप समझते हो नहीं होना चाहिए, फिर भी हो गया, क्या करें अब, वहां क्या कल्याण की बिंदी लगानी। ये पूरा पाठ भी मुझे कुछ पढ़ने के लिए सिखा गया, फिर से ये रिपीट नहीं हो, ये सिखाया ना, बुराई में अच्छाई क्या मिली। जैसे बाबा ने उस दिन बहुत अच्छी बात एक कही थी, अवगुण वाले से भी गुण उठाओ, क्या कहा था याद है, हम वरदानों पर थोड़ा अंडरलाइन करेंगे ना, दो लाइन में ही बाबा इतनी गहरी श्रीमत दे देता है जो लगता है। हाँ अंडरलाइन था कि जैसे वो अवगुणों में दृढ़ है, अवगुण को छोड़ नहीं सकता है, मैं उसके अवगुण देख भी रहा हूं, लेकिन जब वो दृढ़ है तो मैं भी अपने गुणों में दृढ़ रहूं, ये गुण उठा लो, दृढ़ता का गुण है ना, जो बेचारा अपने अवगुण को छोड़ नहीं सकता है। तो जब वो दृढ़ता का गुण उसके अंदर है कि अवगुण भी मैं छोड़ूंगा नहीं, तो तुम दृढ़ता के गुण को अपना लो कि गुण मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ऐसी बाबा की श्रीमत कि मैं गुणों में दृढ़ रहूंगा, अच्छाइयों में दृढ़ रहूंगा, तो गलत से भी बुरे से भी अवगुण से भी हमने गुण ले लिया। एक बार क्या हुआ, ऐसा ही तूफान चला, गृह युद्ध जैसा, और उसमें हमारा सेंटर एक चौथी मंजिल पर था। नीचे एक सरदारों की दुकान थी, उग्रवादी आए और वहां पर आग लगा दी। लगाई सरदारों की दुकान में, टायर की दुकान थी, वो ऐसी भड़की आग जो चारों मंजिल जल गए। चौथी मंजिल पर सेंटर था। बच्चों के संकल्प चलने लगे, कई बाबा के पक्के कच्चे पक्के बच्चे, कि बाबा के यज्ञ का इतना बड़ा म्यूजियम, इतना बड़ा सेंटर जल गया, नुकसान हो गया। संकल्प चलेंगे ना, भगवान का भी जल गया, दूसरा जलता तो अलग बात थी, इसको बाबा ने क्यों नहीं बचाया। और जब बाबा को समाचार सुनाया तो बाबा बड़ा मुस्कुरा के कहता है, बहुत अच्छा हुआ, कल्याणकारी बाबा है ना, जानता है ना किसमें कल्याण है, क्या कल्याण होगा उसमें भला। जल गया मकान, नुकसान हुआ, क्या कल्याण था बताओ। जी नया बनेगा, मेहनत तो लगेगी बनाने में। कल्याण ये था, चौथी मंजिल के होने के कारण वहां की जो दादी थी वो काफी एजेड हो चुकी थी, उनको चढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी, फिर वो लिफ्ट थी नहीं, और नीचे इतने समय से मकान ढूंढ रहे थे, वो कहीं मिलता नहीं था, चेंज भी नहीं कर सकते थे। तो पहले नंबर में जब आग लगी तो गवर्नमेंट ने जिनको नुकसान हुआ उनकी भरपाई करने के लिए अलग अलग फ्लैट दे दिए। तो सबसे पहले एक सुंदर सा स्थान बाबा का नया भवन नीचे मिला, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस मिला पूरा, तो दादी को ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा, नीचे आ गई। पहली कल्याण ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि इतना सारा जला था तो सबको बहुत भावना पैदा हुई, कोई ने फ्रिज लाई, कोई ने कोई चीज लाई, कोई ने कोई चीज लाई, जितनी चीजें थी ना उसे कई गुना और अधिक सामान आ गया। तीसरा क्या है, इंश्योरेंस था अपने सेंटर का, पूरा इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल गया, कोई दूसरा नुकसान नहीं हुआ और सब अच्छे से अच्छा हो गया। लेकिन उस समय देखने वालों के मन में क्या था, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाबा कहता है ऐसे नुकसान में भी कुछ समय धैर्यता से संकल्प करो, बहुत पॉजिटिव संकल्प करो, क्यों क्या कैसे मुलझ नहीं जाओ, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओ। बहुत धैर्यता से, बहुत शांति से, इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी कुछ कल्याण है, इसमें भी कुछ राज समाये हुए हैं। कोई अचानक मौत भी हो गई, हम समझते हैं ये हमारा इतना नजदीक का संबंधी चला गया, कितने क्वेश्चन, कितना अंदर बाहर उथल पुथल हो जाती। लेकिन बाबा को पता है ना, इसका ये पार्ट यहाँ इतना था, अभी दूसरा नया पार्ट है, अच्छे से अच्छा बजाएगा, इसलिए बाबा तो निश्चिंत रहता है, उसको ये संकल्प नहीं चलता ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे अचानक क्यों हो गया। बाबा कहता अगर जो हो गया उसका एक हिसाब किताब पूरा हो गया, और नई सेवा के लिए जरूरत थी वो आत्मा वहां आ गई। इसलिए बहुत त्रिकालदर्शी स्थिति होने के कारण बाबा एक रस स्थिति में रहता है, बच्चे हलचल में आते हैं, क्योंकि एक काल की दृष्टि से देखते हैं, हर दृश्य में कल्याण है। इसलिए कुछ भी हो रहा है हम बच्चों को बहुत शांत, बहुत स्थिर, बहुत खुशनुमा मूड में रहना है, ये श्रीमत है। देखो सब कुछ, समझो सब कुछ, डल नहीं हो जाओ, ऐसा होगा ऐसा होगा, उस समय ऐसा नहीं बुद्धि को डल कर लो जो होगा अच्छा होगा। एक्यूरेट टचिंग आए, हो जाने के बाद ड्रामा लगाना है, पहले से ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना। कई बात इस बात को उल्टे रूप में भी ले लेते हैं लोग, होगा ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। प्रयास सब कुछ करने हैं, प्रयास करने के बाद अगर सफलता नहीं मिलती तो कहना ये ड्रामा में था। प्रयास करने के पहले अगर हम ड्रामा कह करके बैठ जाते हैं तो बाबा कहता है इस जैसा बुद्धू, इस जैसा मूर्ख कोई नहीं। इसलिए हर बात में प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, बचाना है, हर बात में माया से बचाना है, विकारों से बचाना है, प्रकृति से बचना है, क्योंकि प्रकृति की उथल पुथल कितनी तेज गति से हो रही, समाचार सुनेंगे ना, इतनी फास्ट गति की हलचल है, पता नहीं कब तूफान आ जाएगा, कब भूकंप आ जाएगा, कब अग्नि का कोई ऐसा प्रकोप हो जाएगा, कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है। पांचों तत्व अपना प्रकृति का रूप दिखा रहे हैं जो नुकसान कर रहे हैं लोगों का। अब हमारी सेफ्टी किसमें है? कल्याण हम जानते हैं ये सब होगा और उसके बाद ही सतयुग आएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हो गया, यहां का हो गया, बाबा कहता फुल स्टॉप, सोचो नहीं, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए प्रकृति के तत्वों को सेवा करो, उनकी मदद करो, उनको शांति का दान दो, उनके लिए भी कुछ योग करो। लोग उसको अशांत कर रहे हैं इसलिए वो अपना बदला ले रहे हैं, आप उसको शांति का दान दो, प्यार से उसको दृष्टि दो, सकाश दो। कम से कम जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। पावरफुल वायुमंडल होगा तो चारों तरफ के मकान गिर जाएंगे, आपका मकान नहीं गिरेगा। बाबा रक्षा करने नहीं आया, जब यहां पर भूकंप आया था ना भुज के अंदर, कच्छ भुज में, समाचार सुनते होंगे आप लोग, हम 3 दिन के बाद वहां गए थे। जहां जहां बाबा के झंडे लगे हुए थे, सेंटर था, एक भी मकान नहीं गिरा था, दरार आई थी और आजू बाजू में सारा एक भी मकान बचा हुआ नहीं था, सब नीचे थे। हम मकान में जाकर कहते थे, क्या बाबा ये पुराना मकान है, इतना ये कैसे खड़ा रह गया, इसको कौन रोक रहा था, क्या बाबा रोक रहा था क्या? बाबा कहता, अगर मैं ये रोकता तो दूसरे गिराता क्या? मैं ऐसा तो कर ही नहीं सकता हूं, वो भी तो मेरे बच्चे थे ना जिनका गिरा है, तुम भी बच्चे, वो भी बच्चे, तो एक का गिरा दूंगा, एक का बचा दूंगा, ये मेरा काम है क्या? लेकिन जिन बच्चों ने जिस स्थान पर तपस्या की है, अच्छे वाइब्रेशन फैलाए हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार चले हैं, वो स्थान का वायुमंडल इतना शक्तिशाली है, वो प्रकृति के तत्व उसकी रक्षा करते हैं, मैं रक्षा नहीं करता। प्रकृति के तत्व खुद रक्षक बन जाते हैं, भक्षक नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हमने की है सेवा तब तो रक्षा करेंगे। इसलिए बाबा अपने बच्चों को श्रीमत देता है, जिस स्थान पर रहते हो वहां इतने अच्छे शुद्ध पवित्र वायुमंडल का निर्माण करो, इतने अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ जो न तो अशुद्ध आत्माएं आ सकें, क्योंकि कई बार कंप्लेन होती है यहाँ पर भूत आ गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ कोई ने तंत्र विद्या कर दी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, भगवान के बच्चों की भी रक्षा नहीं होती। बाबा मुस्कुराता है, भगवान के बच्चों की रक्षा नहीं होती है तो भगवान की इंसल्ट बच्चे करा रहे हैं। कमी अपनी है, उस स्थान पर व्यक्त और व्यर्थ वातावरण खुद बना रहे हैं, इसलिए व्यक्त आत्माएं, इच्छा वाली आत्माएं भटक रही हैं, घूम रही हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं। बाबा इसमें क्या करेगा? अगर तुमने व्यक्त और व्यर्थ को बचाया है, व्यक्त और व्यर्थ में नहीं गए हो, सदा व्यक्त स्थिति बना के रखी है, सदा शुद्ध सोचा है, सकारात्मक चिंतन चलता है, उस स्थान पर कोई भी आत्माएं वार नहीं कर सकती, ये गारंटी बाबा की है। इसलिए अपनी कमियों को देखना, मेरे अंदर क्या है जिसके कारण ऐसा हुआ। कोई भी चीज का अगर नुकसान हो रहा है, कोई भी प्रकार का हो रहा, तो बाबा की, बाबा ने उस दिन कहा था, अव्यक्त वाणी को थोड़ा याद करना, अगर मेरे बच्चे मेरे फरमान का पालन करते हैं तो सारा विश्व उनके आगे झुक जाएगा, हर आत्मा उनको सम्मान देगी, मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा की ऐसी ऐसी मुरली को अंडरलाइन करके, अगर फरमान का उल्लंघन हो रहा है तो जरूर कोई न कोई अरमान रह जाएगा, किस फरमान का मैं उल्लंघन कर रहा हूं? श्रीमत माना फरमान, बाबा के फरमान अमृत वेले से रात तक के लिए, आंख खुलने से सोने रात सोने तक किस बात के लिए बाबा ने फरमान नहीं किया है, किस बात के लिए श्रीमत नहीं दी है। इतनी कल्याणकारी बाबा की हम बच्चों प्रति वृत्ति भावनाएं हैं, जो बाबा ने आंख खुले तो क्या संकल्प करो, भोजन सामने आए तो क्या संकल्प करो, किसी के संग में जा रहे हो तो क्या संकल्प करो, कोई काम करने जा रहे हो तो क्या संकल्प करो, कोई सेवा के लिए निकलते हो तो क्या संकल्प करो, क्या श्रीमत नहीं दी है। लेकिन हम अलबेले हैं, कोई न कोई प्रकार से उस बात को श्रीमत को भूले हुए हैं, या मनमत का प्रभाव है या परमत का प्रभाव है या शास्त्र मत का प्रभाव है या गुरु मत का प्रभाव है। किसी के मत का अगर किसी के ऊपर प्रभाव पड़ गया, श्रीमत किनारे हो जाते। इसलिए बाबा हम बच्चों कहता, बच्चे श्रीमत में भूल से भी मन मत मिक्स मत करना, परमत के प्रभाव में मत आना, संग की अपनी संभाल करना। तीन दोष बहुत जल्दी लगते हैं, तीन दोष, दोष माना कमियां अवगुण। पहला दोष है संग दोष, इसलिए बाबा की कई मुरलियां इस पर हमको श्रीमत के रूप में मिलती हैं, बच्चे संग की बहुत संभाल करनी, संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। अगर पर चिंतन करने वाले के संग में भी बैठोगे तो अपना प्रभाव डाल देगा, आपका दृष्टिकोण बदल देगा। जैसे शराब पीने वाले के संग में बैठने वाला शराब पीना अपने आप सीख जाता है, सिगरेट पीने वाले का संग करने वाला सिगरेट पीना सीख जाता है। ऐसे ही अगर कोई ब्राह्मण परिवार में ज्ञान और योग के विषय के सिवाय, यहाँ ये हुआ यहाँ वो हुआ, बड़ों ने ये किया छोटों ने ये किया, यज्ञ में ऐसे हो गया, फलाने सेंटर पर बहन ने ये कर लिया, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, बाबा कहता है इन तीन पर को काट दो, इसी मत है, परोपकारी बनो। संग का रंग बहुत जल्दी लगेगा, इसलिए संग से बहुत संभाल करनी है। बीके में भी संग को संभालना है, ये भी बीके में भी कहीं नहीं, कमजोर पुरुषार्थी हैं, युद्ध करने वाले हैं, समान नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात में निराश होने वाले हैं, आप उनके संग में जाओगे कभी भी आपको श्रेष्ठ जीवन बनने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए संग की बहुत संभाल चाहिए, संग दोष है, ये दोष तो नहीं है दोष। और दूसरा है दोष अन्न दोष, बहुत जल्दी लगता है, जिस प्रकार का अन्न पेट में जाता है ना मन वैसा ही बनता है, तन भी वैसा ही बनता है। लेकिन इस पर कई बार कोई कोई मिसगाइड कर रहे हैं। कल एक मिसगाइड की कहानी सुनाता हूं आपको। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आदिवासियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, और उस आदिवासी सम्मेलन में एक महामंडलेश्वर आए थे, गुरु थे, और उनके 2 लाख से भी अधिक आदिवासी चेले हैं। तो बहनों ने उनको निमंत्रण दिया कि आप आइए। वैसे बहनों की जीवन से बहुत प्रभावित, माउंट आबू भी होके गए हैं, हमारे कार्यों से बहुत प्रभावित, लेकिन एक बात उनको बहुत अंदर से खटकती है, वो ये खटकती है कि जब बहनें उनके आश्रम में जाती हैं तो वो कुछ ऑफर करते हैं खाने पीने का, और बहनें उनके पास नहीं खाती। अपने आश्रम में आते हैं तो बहनें उनको ब्रह्मा भोजन खिलाती हैं, कहते हम आपके यहां इतना प्यार से खाते हैं, आप हमारे पास क्यों नहीं खाते, हम अछूत हैं क्या। माना अंदर अंदर उनकी, बोलते नहीं है, सामने हमारे साथ बैठे तब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन जब स्टेज पर गए तो उन्होंने आधा घंटा जो भाषण किया उसमें टोटल यही बातें थी कि हम जब आत्मीय बंधु हैं, सब एक परिवार हैं, हम कहते इतनी ऊंची ऊंची बातें हैं, फिर खाने पीने में क्यों इतनी परहेज कर रहे हैं? इसके हाथ का नहीं खाएंगे, इसके हाथ का नहीं खाएंगे, इसके हाथ का नहीं खाएंगे। भगवान ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे। सबरी माना भिलनी, आदिवासी। ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारे मिसाल दे दिए, मिसगाइड। अब आपको मिसगाइड बताता हूं। अब मेरे पास इतना समय नहीं था जो स्टेज पर मैं इनको जवाब दूं, क्योंकि 5 मिनट मुझे मिले थे बोलने के लिए, और जब मैं बोलना शुरू किया तो उठ के चले भी गए। मैंने अपने भाई बहनों को बाद में क्लास में बताया। हमने कहा कितना प्रजा को मिसगाइड किया जा रहा है, और जितने आज लोग बिगड़े हैं, मन से भ्रष्ट हुए हैं, उस भ्रष्टता का मूल कारण है जिसके पास जाते उसके पास खाते हैं। त्याग किया है, घर बार छोड़ा है, मठ बनाया है, मंडलेश्वर का टाइटल ले लिया, महामंडलेश्वर, लेकिन क्या कहें, धारणाएं नहीं है। जिसके आएंगे खा लेंगे, और खाएंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, सबरी के बेर अगर राम ने खाए, हम सत्य मानते इस बात को, तो सबरी को पहले पहचानो तो सबरी कौन थी। भले भीलनी थी, लेकिन दिन रात वो भगवान का जाप कर रही थी, राम 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 राम, इस रास्ते से आएंगे। इसलिए सवेरे सवेरे 3 बजे उठ करके पूरे आश्रम को झाड़ू लगाती थी, और सिर्फ आश्रम को झाड़ू नहीं लगाती थी, 1-2 किलोमीटर तक रास्ता साफ करके आती थी, कोई कंकड़ न लग जाए, कोई कांटा न लग जाए, राम जी आएंगे इस रास्ते से, सारी सफाई करती थी, और दिन रात राम राम का जाप करती थी। तो राम उसके हाथ का नहीं खाएगा क्या? अगर कोई शिव बाबा का रोज जाप करे, मैं उसके हाथ का खाने के लिए तैयार हूं। उसके दिल में अगर राम के सिवाय कोई नहीं हो, हम खा सकते हैं उसके हाथ का? नहीं खा सकते हैं। हम खाते हैं उनके हाथ का, हमारे पास है ही नहीं भेद, चाहे वो भीलनी बना के दे, चाहे कोई बड़ा ब्राह्मण बना के दे, है भेद हमारे पास क्या? कोई भेद हमारे पास नहीं है। हम पूछते नहीं तुम जी किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस कुल के हो, उनके हाथ का खाते हैं। लेकिन अगर वो राम के सिवाय दूसरे को दिल में बिठाया हुआ है, वो कुकर्म कर रहा है, कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो उसके हाथ का हम क्यों खाएंगे? नहीं खाएंगे। और खाएंगे तो जरूर हमारे मन पर असर आएगा। मैंने एक कहानी सुनाई फिर कल की सभा में। हमने कहा एक सेठ जी ने मंदिर बनाया था, और उस मंदिर पर एक पुजारी रखा जो बहुत आनिष्ट था, बहुत सच्चा था। चलते चलते एक दिन उसके अंदर पता नहीं क्या संकल्प आया, जो मूर्ति के पास चांदी के बर्तन थे, जेवर थे, जो मूर्ति के कपड़े थे, वो चोरी करके भाग गया। 2-3 दिन के बाद उसको अपने आप में पश्चाताप होने लगा, मैं इतने अच्छे स्थान पर बैठा था, भगवान के निकट था, इतने लोग मुझे मान्यता देते थे, मेरे को क्या हो गया जो मैंने भगवान का ही चोरी कर लिया, और चोरी करके जंगल में चला गया, मैं भटक रहा हूं अभी, कोई पूछने वाला ही मेरे को नहीं। तो बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया, फिर आया अपने मालिक के पास, सेठ के पास, कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मालिक ने कहा तुम तो कभी ये भूल कर ही नहीं सकता है, मैं जरा विश्वास है, लेकिन तुमने जो किया है उसका कोई कारण होगा, मैं कारण ढूंढूंगा। जिस दिन तुम यहां से भागे हो उस दिन यहां भोग किसने लगवाया था? बोला फलाने फलाने ने लगवाया था भोग, ब्रह्मा भोजन करवाया था, सबने खूब खाया था यहां पर। बोला उसको बुला के लाओ। उसको बुलाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तुमने भोग लगवाया, ये पैसा कहां से आया था, तो उसने कहा ये पैसा मैंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं कहीं से चोरी की थी, और वो स्वर्ण मुद्राएं मैंने बेची तो पैसा मिला, तो मैंने सोचा इतना बड़ा पाप मैंने किया है, कुछ तो पुण्य कर लूं, तो मैंने उस पैसे से पहले मंदिर में भोग लगवाया। अब चोरी किया हुआ पैसा मंदिर में आया और मंदिर में भोग लगा, और जिसने पहले पुजारी ने पूजा करके खाया उसी पर उसका दोष लग गया, और चोरी के संस्कार आए, उठा करके भाग गया वहां से। ये कहानी नहीं, ये प्रैक्टिकल है। आज योगियों का योग क्यों नहीं लग रहा है? इतने समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इतने समय से हर धारणा को अपना रहे हैं, फिर भी मन भटक रहा है, क्योंकि देने वाले भी इस प्रकार के लोग हैं, बनाने वालों की वृत्तियां भी ऐसी हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे पहले भोग लगाओ, पहले अच्छी तरह से उसको शुद्ध बनाओ, उसमें बाबा की शक्तियां डालो, फिर खाओ, ऐसे नहीं खा लो जल्दी जल्दी में। कुछ नियम, कुछ श्रीमत पालन करो और जितना हो सके अपने हाथ से बना के खाओ तो अच्छा है, भोग लगा के खाओ तो अच्छा है, नहीं तो प्रभाव पड़ जाएगा। हम सब इस श्रीमत को समझें, अन्न दोष बहुत बड़ा दोष है, जिसके हाथ का जहां आया वहां खा लिया उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मन चंचल हो जाता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कर्म इंद्रियों से गलत काम होने लगते हैं। इसलिए अन्न दोष सबसे बड़ा दोष है। और बाबा ने अपने बच्चों को ये बहुत पक्का कराया है कि ब्राह्मण वो है जो शुद्ध अन्न और योगी के हाथ का बना हुआ अन्न खाए, ये किसी के बहकावे में नहीं आना। समाज का पतन अन्न से अधिक हो रहा है और ऐसे समाज सुधारक भी कई बार गलत प्रचार करते हैं कि हम तो जिसके पास जाएंगे खा लेंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर जिसके घर में जाते हैं उसके घर में खा लेते हैं, वो अपने वोट के लिए खाते हैं, हम नहीं खा सकते हैं, हमको वोट नहीं चाहिए किसी का, अपनी दृढ़ता में सफलता है, ये बाबा ने नियम बनाए हैं। और तीसरा दोष जो है वो है दृष्टि दोष। ये हमारी जो दृष्टि है ना, किसी न किसी की कमियों पर, कमजोरियों पर, संस्कारों पर, बुराइयों पर बहुत जाती है, रूप पड़ जाएगी, रंग पड़ जाएगी, भाषा पड़ जाएगी। इसलिए बाबा ने पहले पहले हम सब की दृष्टि का ऑपरेशन किया है, देह को देखना बंद कर दो, सबसे बड़ा दोष है देह की को देखना। श्रीमत दे दी कि देह को मत देखो, अगर देखना ही है तो आत्मा रूपी भ्रकुटी को देखो, और अगर देह ही दिखाई देती है तो लाइट के देह को देखो, इस चारों ओर जो हमारा हो रहा है उसको देखो, ये श्रीमत है। अब इस श्रीमत को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा जो दैहिक दृष्टि का दृष्टिकोण है वो परिवर्तन हो जाएगा। न देह को देखना है, न देह देख करके बात करनी है, न दैहिक रूप से व्यवहार में आना, वही सब विकारों की जड़ है, सभी पापों का बाप देहमान है। जब बाबा ने हमारी ऑपरेशन कर दिया, हम देह को देखते ही नहीं है, आत्मा को देख करके बात करते हैं, आत्मा के गुणों को देख रहे हैं, तो ये दृष्टि दोष दृष्टि नहीं हो सकती, बहुत निर्मल शुद्ध दृष्टि, पवित्र दृष्टि। तो ये श्रीमत जो बाबा की है ना, इसकी गहराई को समझना, और समझ करके बाबा कहता है बच्चे यही मेरे हाथ हैं, यही मेरे कदम हैं। क्या श्रीमत, श्रीमत का हाथ बाबा का साथ है, श्रीमत के कदम पर कदम, बाबा के कदम पर कदम माना क्या है, बाबा के कदम पर कदम माना ऐसा थोड़ी बाबा ऐसे ऐसे चला था, इस पहाड़ पर गया था तो मैं भी कदम पर कदम रख करके चला जाऊं, ये कदम नहीं है, स्थूल कदम की बात नहीं है। लेकिन जो श्रीमत बाबा ने सिखाई है, पालन की और करवाई, उस श्रीमत को पालन करना ही कदम पर कदम रखना है। तो हम सब बाबा के बच्चे श्रीमत को समझें, और जिस बात में मूंझो ना, बाबा की उसी दिन की मुरली को नोट कर लो, उसी दिन की मुरली में उस श्रीमत के बारे में कोई न कोई बात, वरदान में, स्लोगन में, मुरली में, ये बाबा का मुरली जादू का मंत्र, जादू का घर है, आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। अगर नहीं मुरली से मान लो आपको टचिंग आ रही है, आप जाके बाबा के कमरे में ऐसे बैठ जाओ बाबा के सामने, बाबा ऐसे गाइड करेगा, ऐसे बच्चे ऐसे 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 आंखों से गाइड कर देगा। ये फोटो के आगे नहीं बैठते हैं हम, बाबा चैतन्य है, अनुभव होगा और बाबा गाइड करेगा, बच्चे ये करो ये करो ये करो। इसलिए कभी भी मूंझना नहीं, क्या करूं कैसे करूं, ऐसी बात आ गई, ये परीक्षा आ गई, अब मैं बाबा की कौन सी श्रीमत किससे पूछूं। बहनों से पूछोगे कभी कभी हो सकता है अपनी बुद्धि की जजमेंट के अनुसार वो आपको श्रीमत दे दे, ये कर लो ये कर लो, फिर हार हो जाए, फेल हो जाओ, भाई बहन जी ने तो बड़ी गलत श्रीमत दे दी मुझे। बाबा कहता वो श्रीमत नहीं है, आत्माएं जितनी स्टेज तक पहुंची उतनी मत आपको दे सकती हैं, लेकिन परमात्मा की मत मुरली और उसकी टचिंग वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको आप कैच करने का अभ्यास करो, समझो और उस पर चलते रहो। आपको कभी भी ब्राह्मण जीवन में मुश्किल का, मेहनत का, उलझन का अनुभव नहीं हो सकता, ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। अभी आप 10 मिनट कोई अनुभव प्रश्न उत्तर करना चाहो तो कर सकते हो, 12:30 पूरा करेंगे, ठीक है? कोई को कोई बात पूछनी है? पूछनी तो हाथ उठाओ, खुले दिल से रूह रियान करो ना, आप तो सब शांति से सुन रहे हो, रूह रियान करो। बोलो विनयना बहन, बोलो। और कोई बहने बोलो भाई, नाम मैं सबके तो नहीं जानता। बोलो माता जी। कोई को नहीं बोलना कुछ? बोलेंगे तो और निकलेगा ना कुछ न कुछ। बोलो। हाँ बात। क्या उत्तर दिया आपने? ठीक उत्तर दिया, क्योंकि बाबा तो डायरेक्टर क्रिएटर ड्रामा का ही है ना, तो बड़ा तो वही है। लेकिन कई बार बाबा कभी कभी मुरली में कह देता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसलिए लोग समझते हैं जब भगवान भी बंधा हुआ है तो बड़ा ड्रामा हो गया ना। लेकिन बाबा हम बच्चों को ये बात इसलिए कहता है कि कोई भी बच्चे बाबा के ऊपर दोष दर्पण न करें। बाबा तो जानता है ना सब कुछ, लेकिन जानने के बाद भी ड्रामा को आगे इसलिए कर देता है कि बच्चे ये नहीं कहेंगे बाबा को पता था फिर क्यों नहीं बताया, अब बता देगा तो उसको ड्रामा कहेंगे क्या? इसलिए बाबा कहता है मैं कभी नहीं बताऊंगा, ये छत आज गिर जाएगी। जानता भले हूं ड्रामा में, लेकिन बताऊंगा तो नकली ड्रामा हो जाएगा, असली थोड़ी रहेगा। इसलिए बाबा तो बड़ा है ही और रहेगा ही, ड्रामा तो रचना ही है, तो समय है। लेकिन बाबा अपने को इन बातों में बच्चे उलझ न जाएं, कोई बाबा के प्रति इतना नहीं समझ लें बाबा ये कर देगा, बाबा ऐसा कर देगा, तब कहता मैं भी तो ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मैं कैसे कह सकता हूं। ठीक उत्तर है। और कोई? कुमारियां बोलो कुछ। क्या धन लाके देता है? ऐसा है कि अगर आपको पता चलता है कि गलत है, कई बार मालूम नहीं होता है, सबका पता चलो चला कैसे धन आया है, इसलिए बाबा कहता है कि यज्ञ की बेहद की भंडारी में भेज। अगर आपको लगता है ऐसा तो बाबा के बेहद यज्ञ में भंडारी में आता है तो बाबा उसको कहाँ यूज करना है वो उसी रास्ते पर उसको ले जाता है। ब्राह्मणों के लिए कई बार बाबा कहता है हमारे सच्चे पक्के ब्राह्मणों के पेट में सच्चा अन्न जाना चाहिए, सच्चा जाना चाहिए, सच्ची कमाई का जाना चाहिए। इसलिए कई बार कह देता है ना कि ऐसा कोई अन्न आता है ना, ऐसा कोई पैसा आता है मकानों में तोड़फोड़ में इधर उधर में चला जाता है। तो बाबा के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, ऑटोमेटिक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए बाबा के यज्ञ में अगर सफल हो गया, किसी ने कोई दान ऐसा भेज दिया, तो कहां पर किस तरह से लगना है वो बाबा की मशीनरी के अंदर सेट हो जाता है। अगर आप समझती हो कि अगर हमको लगता है कि ऐसा है, हो सकता है, तो बाबा के यज्ञ में सफल कर देना चाहिए। खुद यूज नहीं को, पर्सनल यूज नहीं को, पर्सनल के लिए नहीं यूज करो। अगर बेहद का भंडारा चलाना है, कुछ ऐसा करना है और कोई ऐसा आता है तो बाबा को ऑफर करो और कुछ हिस्सा बाबा के लिए निकालो, मधुबन के लिए निकाल दो, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। बाबा उसको अपनी दृष्टि की सकास से शुद्ध भी बना सकता है। बाबा को ऑफर करेंगे ना तो शक्ति भरेगी उसमें, तो चेंज करेगा वो। इसलिए हमेशा का नियम बनाया हुआ है, भोग आता है कोई भी चीज खाते हो बाबा को स्वीकार करो, ऑफर करो। किस लिए कहा है? बाबा तो खाता नहीं है। नियम क्यों बनाया है? कि बाबा के पास आएगा तो बाबा की शक्तियां, बाबा के वाइब्रेशन उसके अंदर आएंगे, और उसमें कोई अगर होगी भी ऐसी बातें तो आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। इसलिए बिना भोग का भोजन खाना माना कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई गलत हो सकता है। स्वीकार करो फिर खाओ। ओके चले, शांति।